हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव वीर और अलीजा के साथ पहाड़ी पर लॉन्ग ड्राइव पर गया हुआ था, जहां उसने तारा को देखा। वापस लौटते वक्त अलीजा ने ध्रुव से तारा के बारे में बात की कि वो दिखने में काफी खूबसूरत थी। ध्रुव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे यही सहा कि उसके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। इतना कहने के बाद ध्रुव ने टॉपिक क्लोज कर दिया था। घर पहुंचने तक ध्रुव ने अपनी आईज क्लोज की तो उसकी आंखों के सामने तारा की आंखें आ रही थी, जो हनी ब्राउन कलर की थी। ध्रुव ने जब उसे बचाया था तो कुछ पल के लिए उन दोनों का आई कॉन्टैक्ट हुआ था। तारा की आंखें सामने आते ही ध्रुव ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। उसे इस तरह हड़बड़ाता देखकर वीर ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। हम घर कब तक पहुंचेंगे? थोड़ा फास्ट ड्राइव करो ना, अभी तक तो हम आधे रास्ते भी नहीं आए हैं। तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं कर लेता हूँ, ध्रुव ने चिढ़कर जवाब दिया। उसकी आवाज में अग्रेशन था। वीर ने तुरंत ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक दी। उसने गाड़ी से उतरते हुए ध्रुव को ड्राइविंग सीट पर आने का इशारा किया। ध्रुव ने ये नहीं सोचा था कि वीर इस तरह उसे ही ड्राइविंग करने का बोल देगा। उसने सिर हिलाया और धीरे से बड़बड़ाकर कहा, सही कहा था डैड ने, अपना मैनेजर वीर के बजाय किसी और को चुनना चाहिए था। ध्रुव ड्राइविंग सीट पर आ गया था। वो क्रूएल हार्टेड जरूर था, लेकिन अपने दोस्तों और फैमिली के लिए नहीं। उसने कोई शिकायत नहीं की और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन और बाकी फैमिली से मिलने के बाद रात के वक्त कृषा और युग ऊपर अपने फ्लोर पर थे। कृषा बार बार ध्रुव को कॉल कर रही थी ताकि वो घर आ जाए। उसको ऐसा करते देखा युग इरिटेट हो गया। उसने कृषा के हाथ से उसका मोबाइल छीना और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, कभी इतने कॉल तुमने मुझे तो नहीं किए? वो बच्चा नहीं है, अपने आप आ जाएगा। और मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है कि एक वक्त ऐसा आएगा शायद तुम्हें ध्रुव के लिए बहुत टाइम के लिए दूर रहना पड़े, उसका चेहरा तक देखने को ना मिले। तब क्या करोगी तुम? तब का तब सोचूंगी, लेकिन अभी मुझे ध्रुव मेरे पास चाहिए, कृषा ने युग की हेजल ब्लू आंखों में देखते हुए कहा। युग ने आईज रोल की और फिर कृषा को अपने और करीब करते हुए कहा, थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया करो, सारा दिन उसी की रट लगा कर रखती हो। वैसे भी जब से वो हमारी लाइफ में आया है तुम्हारा ज्यादातर टाइम उसी के साथ बीतता है, फिर भी मैंने कंप्लेन नहीं की। अब मुझे मेरा प्राइवेट स्पेस एंजॉय करने दो। खबरदार जो अब तुम्हारे मुंह से ध्रुव का नाम भी निकला। ऐसा हुआ तो मैं कल ही उसे यहाँ से ऐसी जगह भेज दूंगा कि तुम्हें कॉल तक करने का मौका नहीं मिलेगा। एंड यू नो वेरी वेल मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, युग ने सीधे सीधे धमकी देते हुए कहा, जिससे कृषा के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। कृषा कुछ कह पाती उससे पहले युग ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। वो उसे काफी इंटेंसिटी से किस कर रहा था, जबकि कृषा का ध्यान युग ने थोड़ी देर पहले जो धमकी दी थी उसमें था। वो कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी। युग किस करते हुए उसे बेडरूम की तरफ ले जा रहा था। वो दोनों बेडरूम में आए ही थे, इससे पहले युग पैर से किक करके दरवाजा बंद करता किसी ने दरवाजे को पकड़ लिया और ये देखते ही युग तुरंत कृषा से दूर हो गया। युग ने दरवाजे की तरफ देखकर इरिटेट होकर कहा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अब तुम बच्चे नहीं रहे हो जो तुम्हें हमें डिस्टर्ब करने के बहाने बनाने पड़े। कम से कम बड़े होने के बाद तो अपनी मॉम डैड की प्राइवेसी का ध्यान रखा करो। नॉक करके नहीं आ सकते थे क्या तुम? ध्रुव ने आंखें छोटी करके युग की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, मुझे मेरी मॉम से बात करनी है। हाँ, जब भी मैं इसके पास होता हूँ तब से बचपन से तुम्हें इससे कुछ ना कुछ बात करनी ही होती है, युग ने चिढ़कर जवाब दिया और फिर बाहर जाते हुए धीरे से बड़बड़ाकर कहा, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा डैड, तो उल्टे सीधे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। मॉम से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं होने वाली है, ध्रुव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। उसने युग की बात सुन ली थी। युग के जाने के बाद ध्रुव ने कृषा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और जाकर उसके गले लग गया। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपके रोमांस के बीच में इंटरप्ट किया। आपने इतने सारे कॉल किया तो सोचा कोई जरूरी बात होगी, जाकर पूछ लेता हूँ, वरना आपको डिस्टर्ब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये बहाने तुम अपने डैड के सामने बनाना, तुम बचपन से ऐसा कर रहे हो। डैड है वो तुम्हारे और उनकी वजह से तुम इस दुनिया में हो, उसके बावजूद तुम्हें उसके मेरे करीब आने पर प्रॉब्लम होती है। अजीब लड़के हो तुम, कृषा ने ध्रुव से अलग होकर सिर हिलाकर कहा, जिस पर ध्रुव ने बिना कुछ कहे कंधे उचका दिए। वहीं युग इस वक्त बाहर था, वो कुछ सोच रहा था इसीलिए बिल्कुल शांत था। कुछ देर बाद उसने धीमी लेकिन कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें फ्रंट फुट में लाने से पहले तुम्हें मीडिया और अंडरवर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस करना जरूरी है बेबी डेविल। आज तक मैंने तुम्हें सबसे छुपा कर रखा, क्योंकि जो चीज़ जितनी छुपा कर रखी जाती है उसकी उतनी ही वैल्यू होती है। युग राणा का बेटा आम तो वैसे भी नहीं हो सकता, बोलते हुए उसके फेस पर ईविल स्माइल थी। उसने अपने हाथ में मोबाइल ले रखा था जिसमें किसी पार्टी का इन्विटेशन आया हुआ था। युग ने उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा कर कहा, तो शुरुआत एक पार्टी से की जाए। सातों पड़ावों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उनमें तीन पड़ाव और जोड़ने जरूरी हैं, उसके लिए यहाँ तो जाना बनता है। युग ने इन्विटेशन कार्ड खोलकर देखा तो उसका वेन्यू दिल्ली था और पार्टी का होस्ट प्रतीक रायचंद था, जो एशिया का वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन था। वेलकम टू माई वर्ल्ड मिस्टर रायचंद, युग ने सिर हिलाकर कहा और फिर उसे पार्टी को अटेंड करने के लिए कन्फर्मेशन भेज दिया था। ये एक VIP पार्टी थी जहाँ खास इनविटेशन भेजे जाते थे और इनविटेशन कंफर्मेशन मिलने के बाद ही उसके हिसाब से हर एक गेस्ट के लिए अलग से तैयारी की जाती थी। कंफर्मेशन मेल भेजने के बाद युग कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि ध्रुव कृषा की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था। उसे देखकर युग ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सो तुमने मुझे चैलेंज किया था कि मैं तुमसे बदला नहीं ले पाऊंगा। आई हेट जब कोई मुझे चैलेंज करता है, बट आई लव जब मुझे सामने वाले को हराने का मौका मिलता है। फिर सामने मेरा बेटा ही क्यों ना हो। सो रेडी बेबी डेविल, क्योंकि इस बार तुम्हारा सामना खुद अपने बाप से हो रहा है और बाप हमेशा बाप होता है। ध्रुव ने थोड़ी देर पहले युग को काफी लाइट तरीके से कहा था, लेकिन युग ने उसे चैलेंज के तौर पर लिया था। ध्रुव खुद भी नहीं जानता था कि युग उसके लिए क्या प्लान कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन तारा को अपने ठिकाने पर लेकर आ गया था। उसने उसे कमरे में बंद कर दिया था। वो एक एवरेज साइज का कमरा था जहां सोने के लिए नीचे गद्दा लगाया हुआ था और पानी के लिए साइड में एक मटका रखा हुआ था। उसके अलावा उस कमरे में कोई फैसिलिटी नहीं थी। आज से पहले तारा इस तरह की किसी जगह पर नहीं रही थी। तारा के सामने खाना और पानी रखा हुआ था, उसके बावजूद उसका ध्यान ध्रुव में था। तारा अपनी और ध्रुव की पहली मुलाकात के बारे में सोच रही थी जो थोड़ी देर पहले ही हुई थी। तारा ने खोए हुए अंदाज में कहा, तो क्या सच में वो माफिया का नया किंग बनने वाला है? अगर ऐसा है तो मुझे उसके बारे में सोचना छोड़कर उस तक पहुंचना होगा। उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना है, ना कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होना है। तारा, रिपोर्ट में यही लिखा था, वो फैमिली सालों से अंडरवर्ल्ड पर राज कर रही है। इस बीच न जाने उन्होंने कितने मासूम लोगों की जान ली होगी।
अचानक तारा की नज़र खाने की तरफ गई। खाने को देखते हुए तारा ने धीरे से कहा, लड़ना है तो खुद को हर तरीके से स्ट्रांग करना होगा। इन बेवकूफ़ों से कुछ नहीं होने वाला। मुझे ही कोई सॉलिड प्लान बनाकर ध्रुव तक पहुंचना होगा। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी राह चलती लड़की की तरह अट्रैक्ट होने वालों में से नहीं है। आफ्टरऑल माफिया किंग का बेटा है, कोई ऐरा गहरा लड़का तो है नहीं जो किसी भी लड़की को देखा और उसके पीछे लट्टू हो जाएगा। ऊपर से इतना हैंडसम भी है। वो जिस दुनिया का हिस्सा है वहां मुझसे भी खूबसूरत लड़कियां होंगी, ग्लैमर होगा, पर उसका एटीट्यूड देखकर यही लग रहा कि वो किसी को भाव भी देता होगा। एक ही मुलाकात में तारा ध्रुव के बारे में काफी कुछ समझ गई थी। तारा वहां बैठकर खाना खाने के बाद आगे की प्लानिंग कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ युग जब कमरे में पहुंचा तो उसने देखा ध्रुव कृषा की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और कृषा धीरे धीरे उसके बालों में हाथ घुमा रही थी। ध्रुव की आंखें बंद थीं। कृषा ने युग की तरफ देखा तो उसे चुप रहने का इशारा किया। युग ने सार्कास्टिक वे में सिर हिलाया और कृषा के पास आकर कहा, 2 साल का बच्चा नहीं है तुम्हारा बेटा जो मेरी आवाज़ सुनकर उठ जाएगा, और उठ जाए तो अच्छा है। ये मेरा बेडरूम है, मेरे फ्लोर तक आने की परमिशन किसी को नहीं थी, और ये मेरे बेडरूम में मेरे बेड पर मेरी वाइफ की गोद में सिर रखकर सो रहा है। एक लाइन तुम भूल गए मिस्टर युगराना कि मेरा बेटा मेरे ही बेडरूम में अपनी मॉम की गोद में सिर रखकर सो रहा है, कृषा ने मुंह बनाकर जवाब दिया। युग की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने आंखें खोली और कृषा की गोद से अपना सिर हटाकर कहा, इतना जेलसी मिस्टर राना, वो भी अपने ही बेटे से? कल को आपकी माफिया किंग की पोजीशन भी मेरे पास ही आने वाली है, तब भी चेलस होंगे क्या आप मुझसे? किंग की पोजीशन मैंने सालों संभाली है बेबी डेविल, और मुझे कभी उससे इतना ऑब्सेशन नहीं रहा जितना अपनी वाइफ से है। चाहो तो अभी ले लो, पर बदले में तुम हम दोनों के बीच में नहीं आओगे। बोलो मंजूर है? युग ने भौंई उठाकर कहा, इट्स इम्पॉसिबल डैड, बीच में तो मैं तभी आ गया था जब इस दुनिया में आया था, बाकी अब कुछ नहीं हो सकता, आपको मुझे झेलना होगा। ध्रुव ने कंधे उठाकर कहा और उठकर बाहर जाने लगा। बाहर जाते हुए वो दरवाजे के पास रुका और युग की तरफ मुड़कर बोला, आपके लिए गुड न्यूज़ है, कुछ दिनों के लिए मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, अगले कुछ दिनों तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ध्रुव अपने कदम आगे बढ़ाता उससे पहले कृषा जल्दी से बोली, और ये बात तो मुझे आप बता रहे हो? लिसन, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ। कृषा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि युग ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसे काम के चलते बाहर जाना होगा और उसमें तुम इंटरफेयर नहीं करोगी। अगर काम माफिया से जुड़ा हुआ है तो तुम उन कुछ दिनों में अपनी मॉम से कॉल पर भी बात नहीं करने वाले हो। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं अपना मोबाइल यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। ध्रुव ने इतना ही कहा और फिर कमरे से चला गया। उसके जाते ही कृषा ने युग की तरफ देखकर कहा, सच सच बताओ, तुम मेरे बेटे को पनिशमेंट दे रहे हो ना, ताकि वो हम दोनों के बीच नहीं आए? कैसे डैड हो यार तुम, हमारा ही बेटा है, हमारे साथ रहता आया है, और अब क्यों उसे मुझसे दूर भेज रहे हो? फर्स्ट एट ऑल, तुम्हारी तरह मुझे भी अभी पता चला है, शायद काम सारा ने बताया होगा, और उसने कुछ कहा है तो उसमें ध्रुव की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगी। बाकी अब तुम्हारे बेटे को अपने पल्लू से दूर करो ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल सके, युग ने सख्त आवाज़ में जवाब दिया। कृषा के पास युग की बात मानने का और कोई रास्ता नहीं था। उसने युग की बात पर हामी भरी और सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह ध्रुव जल्दी ही प्राइवेट जेट से बैंगलोर के लिए निकल गया था। उसके बैंगलोर जाने के बाद खबर तुरंत मार्टिन को पता चल गई थी। आखिर उसने ध्रुव तक जो पहुंचना था वो इस वक्त तारा के सामने उसके कमरे में था। अब अचानक से वो बैंगलोर कैसे जा सकता है? अगर वहां तुम्हें भेजा तो उसे शक हो जाएगा, मार्टिन ने गुस्सा जताते हुए कहा। उसका कहना भी सही था, ध्रुव ने तारा को मुंबई में देख लिया था, अगर अगले ही दिन वो बैंगलोर जाती तो उसे पक्का यकीन हो जाता कि वो उसके पीछे आई है। तारा ने कुछ पल रुक कर कहा, मेरी टिकट बुक करवाओ, आगे जाकर क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगी। तारा ने अपनी तरफ से प्लान बना भी लिया था। मार्टिन ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। उसका कॉन्फिडेंस और चेहरा देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कोई आम लड़की हो। मार्टिन कुछ पूछता उससे पहले तारा बोली, यकीन मानो मेरा प्लान ज्यादा अच्छा है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, अपने आदमियों को भी भेज सकते हो। अब अगर एक दिन की भी देर की तो मामला सच में बिगड़ जाएगा। मार्टिन ने उसकी बात पर हामी भरी और तुरंत तारा के लिए टिकट बुक करने के लिए चला गया। उसकी जाते ही तारा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और उसने धीरे से कहा, सुध्रुव राणा, तुम्हें तुम्हारे तरीके से हैंडल करने के लिए तारा आ रही है। मुलाकातें भी होंगी, इश्क भी होगा, जाल भी बिछेगा और पंछी भी आकर फंसेगा, पर यह मुझ पर डिपेंड करता है। उस पक्षी को मुझे आज़ाद करना है या फिर हमेशा के लिए पिंजरे में कैद। तारा अपने प्लान के साथ पूरी तरह तैयार थी। मार्टिन ने उसके लिए टिकट बुक कर लिया था। इस वक्त तारा मार्टिन और मिली के साथ फ्लाइट में थी और वो बैंगलोर के लिए निकल रहे थे।